नमस्ते, मैं आरव हूँ। नाइन आर ट्री के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज मैं इस पुस्तक का सारांश और समीक्षा करूंगा, गुड इनसाइड। क्लिनिकल मनोवैज्ञानिक डॉक्टर बेकी कैनेडी की पालन पोषण संबंधी पुस्तक है, जो बच्चों के व्यवहार को केवल अनुशासन की समस्या मानने के बजाय उनकी भावनात्मक अवस्था का संकेत मानने का आग्रह करती है। इसका केंद्रीय विचार है कि बच्चा अपने भीतर मूलतः अच्छा है, भले ही उसका व्यवहार किसी क्षण कठिन, आक्रामक या असहयोगी हो। पुस्तक का उद्देश्य माता पिता को दोष बोध और त्वरित दंड की आदत से निकालकर शांत, स्पष्ट और संबंध आधारित नेतृत्व की ओर ले जाना है। केनेडी व्यवहार सुधार को नकारती नहीं है, बल्कि कहती है कि सीमाएं तब अधिक प्रभावी बनती हैं जब बच्चा पहले स्वयं को सुरक्षित, समझा हुआ और जुड़ा हुआ महसूस करे। यह व्यावहारिक गैर कथा, मार्गदर्शिका नखरे, भाई बहन के संघर्ष, अलग होने की चिंता और भावनात्मक विस्फोट जैसी रोजमर्रा की स्थितियों के लिए दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है। साथ ही यह माता पिता की अपनी परवरिश से बनी प्रतिक्रियाओं और पीढ़ीगत पैटर्नों को समझने पर भी जोर देती है। मैं आपको इस किताब से मुख्य बातें बताऊंगा। सबसे पहले, अच्छे भीतर का सिद्धांत, व्यवहार और पहचान को अलग करना। पुस्तक का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत यह है कि बच्चे की पहचान को उसके व्यवहार से अलग रखा जाए। बच्चा मार सकता है, झूठ बोल सकता है, चीख सकता है या नियम तोड़ सकता है, पर इन व्यवहारों से यह निष्कर्ष नहीं निकलता कि वह बुरा, चालाक या बिगड़ा हुआ है। केनेडी के अनुसार, कठिन व्यवहार अक्सर तनाव, निराशा, भय, ईर्ष्या, थकान या अभी विकसित न हुई आत्मनियंत्रण क्षमता का बाहरी रूप होता है। यह दृष्टि माता पिता को व्यवहार की अनुमति देने के लिए नहीं कहती, बल्कि यह उन्हें अधिक सटीक प्रतिक्रिया चुनने में मदद करती है। उदाहरण के लिए, मारने पर सीमा स्पष्ट रह सकती है कि किसी को चोट नहीं पहुंचाई जा सकती, लेकिन प्रतिक्रिया बच्चे को शर्मिंदा करने के बजाय उसके आवेग और भावनाओं को संभालने में सहायक हो सकती है। पहचान पर हमला, जैसे बच्चे को बुरा कहना, प्रायः शर्म पैदा करता है। शर्म बच्चे को सहयोग सिखाने के बजाय अपनी रक्षा करने, छिपाने या और अधिक विरोध करने की ओर धकेल सकती है। इसके विपरीत, अच्छे भीतर का सिद्धांत माता पिता को समस्या को बच्चे के विरुद्ध युद्ध नहीं, बल्कि बच्चे के साथ मिलकर हल की जाने वाली कठिनाई के रूप में देखने देता है। इस तरह करुणा और जवाबदेही एक साथ रह सकती है। दूसरा, सुधार से पहले संबंध, कनेक्शन कैपिटल का व्यावहारिक महत्व। केनेडी संबंध को अनुशासन का विकल्प नहीं, उसकी आवश्यक आधारशिला मानती है। पुस्तक में कनेक्शन कैपिटल का विचार उस भावनात्मक भरोसे की ओर संकेत करता है जो रोज के छोटे सकारात्मक संपर्कों से बनता है। जब बच्चे को बार बार अनुभव होता है कि माता पिता उसकी बात सुनते हैं, उसकी भावनाओं को जगह देते हैं और कठिन समय में भी संबंध नहीं तोड़ते, तब चुनौतीपूर्ण क्षणों में सीमा स्वीकार करना अपेक्षाकृत संभव होता है। इसका अर्थ हर मांग मान लेना, लगातार मनोरंजन करना या बच्चे को निराशा से बचाना नहीं है। संबंध का अर्थ है सीमा लगाते समय भी बच्चे की भावना को मान्यता देना। मसलन, स्क्रीन बंद करनी है तो निराशा वास्तविक हो सकती है, फिर भी नियम कायम रह सकता है। इस दृष्टि में माता पिता पहले अपनी आवाज, शरीर भाषा और उपस्थिति से सुरक्षा का संकेत देते हैं, फिर अपेक्षा या सीमा स्पष्ट करते हैं। यह तरीका त्वरित आज्ञा पालन की गारंटी नहीं देता, क्योंकि बच्चा फिर भी रो सकता है या विरोध कर सकता है, लेकिन इसका दीर्घकालिक लक्ष्य बाहरी डर नहीं, सहयोग की क्षमता और रिश्ते में भरोसा है। पुस्तक इसलिए रोजमर्रा के जुड़ाव को संकट के समय काम आने वाले भावनात्मक भंडार के रूप में देखती है। तीसरा, भावनात्मक नियमन, बच्चे को शांत कराने से आगे की क्षमता। गुड इनसाइड में भावनात्मक नियमन को लचीलेपन का केंद्रीय कौशल माना गया है। छोटे बच्चे तीव्र भावनाओं के दौरान अक्सर स्वयं को व्यवस्थित नहीं कर पाते, इसलिए केवल यह कहना कि शांत हो जाओ पर्याप्त नहीं होता। उन्हें पहले एक अपेक्षाकृत शांत वयस्क की जरूरत होती है, जो उनकी बड़ी भावना को संभालने योग्य अनुभव में बदल सके। केनेडी का जोर सह नियमन पर है, अर्थात माता पिता अपनी प्रतिक्रिया को स्थिर रखते हुए बच्चे के अनुभव को नाम दें, सुरक्षा दें और आवश्यक सीमा लागू करें। इसका उद्देश्य हर रोना तुरंत रोकना नहीं, बल्कि बच्चे को यह अनुभव कराना है कि निराशा, क्रोध और भय सहने योग्य अवस्थाएं हैं। समय के साथ ऐसे अनुभव बच्चे की अपनी भावनाओं को पहचानने, शब्दों में व्यक्त करने और आवेग के बाद लौटने की क्षमता को सहारा दे सकते हैं। पुस्तक खुशी को हर समय बनाए रखने के लक्ष्य से अधिक लचीलेपन को महत्व देती है। बच्चा असफलता, अस्वीकृति या बदलाव से पूरी तरह बच नहीं सकता, इसलिए परवरिश का उपयोगी काम उसे कठिन भावनाओं से बचाना नहीं, बल्कि उनके बीच सुरक्षित ढंग से गुजरना सिखाना है। फिर भी नियमन का अर्थ निष्क्रियता नहीं है। यदि बच्चा किसी को चोट पहुंचा रहा है तो वयस्क को तत्काल हस्तक्षेप करना होगा। अंतर केवल इतना है कि हस्तक्षेप नियंत्रण और अपमान की भाषा में नहीं, सुरक्षा और कौशल निर्माण की भाषा में किया जाता है। चौथा, दृढ़ सीमाएं। उदार अनुमति नहीं बल्कि सुरक्षित नेतृत्व, संबंध केंद्रित पालन पोषण को कभी कभी ढील देने या हर व्यवहार पर बातचीत करने के रूप में समझ लिया जाता है। केनेडी की स्थिति इससे अलग है। वह माता पिता को स्टडी लीडरशिप यानी शांत लेकिन दृढ़ नेतृत्व की ओर ले जाती है। बच्चे की इच्छा और उसकी वास्तविक जरूरत अलग हो सकती है। वह अधिक मिठाई, देर तक जागना, हर विवाद में जीतना या किसी नियम से छूट चाहता हो, फिर भी वयस्क को स्वास्थ्य, सुरक्षा और पारिवारिक व्यवस्था के अनुरूप निर्णय लेना पड़ता है। इस मॉडल में सीमा छोटी, स्पष्ट और लागू करने योग्य होती है। माता पिता बच्चे की नाराजगी को अपनी विफलता का प्रमाण नहीं मानते। वे कह सकते हैं कि बच्चे को यह पसंद नहीं आएगा, फिर भी निर्णय बना रहेगा। यह विचार विशेष रूप से उन माता पिताओं के लिए उपयोगी है जो बच्चे के रोने, गुस्से या असहमति से तुरंत पीछे हट जाते हैं या उल्टे अपनी बात मनवाने के लिए धमकी और शर्म का सहारा लेते हैं। पुस्तक इन दोनों छोरों के बीच रास्ता सुझाती है। वयस्क भावनात्मक रूप से उपलब्ध रहें, पर निर्णय की जिम्मेदारी बच्चे पर न छोड़ें। सीमाओं की स्थिरता बच्चे के लिए पूर्वानुमेयता बनाती है। पूर्वानुमेयता सुरक्षा बढ़ाती है और सुरक्षा सहयोग तथा आत्मनियंत्रण के विकास के लिए अनुकूल आधार देती है। अंत में माता पिता की पुरानी परवरिश, दोषबोध और पीढ़ीगत चक्र। पुस्तक केवल बच्चे के व्यवहार का विश्लेषण नहीं करती बल्कि यह भी पूछती है कि किसी बच्चे के रोने, अवज्ञा या गुस्से पर माता पिता इतनी तीव्र प्रतिक्रिया क्यों देते हैं। केनेडी मानती हैं कि वयस्क की प्रतिक्रियाएं अक्सर उसकी अपनी परवरिश, दंड के अनुभवों, उपेक्षित भावनाओं और अच्छे माता पिता बनने के दबाव से प्रभावित होती हैं। इसलिए कठिन क्षण में समस्या केवल बच्चे की नहीं होती, दो तंत्रिकीय और भावनात्मक अवस्थाओं की मुलाकात भी होती है। यदि माता पिता अपने ट्रिगर पहचान सकें, रुक सकें और बाद में संबंध की मरम्मत कर सकें तो वे पुराने पैटर्न को अनिवार्य रूप से आगे बढ़ाने से बच सकते हैं। यह दृष्टिकोण माता पिता को पूर्णता का लक्ष्य नहीं देता। गलती, ऊंची आवाज या गलत निर्णय हो सकते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि गलती के बाद जिम्मेदारी ली जाए, बच्चे से फिर जुड़ा जाए और अगली बार बेहतर विकल्प पर विचार किया जाए। इस प्रकार दोषबोध को उपयोगी आत्मनिरीक्षण से अलग किया जाता है। अंधा दोषबोध व्यक्ति को या तो कठोर रक्षात्मकता में ले जा सकता है या असंगत उदारता में। आत्मकरुणा इसके विपरीत जिम्मेदारी से भागे बिना सीखने की जगह बनाती है। यही पीढ़ीगत बदलाव का व्यावहारिक पक्ष है। बच्चों को वह भावनात्मक भाषा और सुरक्षा देना जो शायद माता पिता को स्वयं पर्याप्त रूप से नहीं मिली थी। निष्कर्ष में गुड इनसाइड उन माता पिताओं, देखभालकर्ताओं और परिवार पेशेवरों के लिए विशेष रूप से उपयोगी है जो बार बार के संघर्षों में दंड, धमकी, चिल्लाने या अपने ही दोषबोध के बीच फंसा हुआ महसूस करते हैं, या छोटे बच्चों के परिवारों के लिए सीधे उपयोगी विषय उठाती है। लेकिन इसके सिद्धांत बड़े बच्चों के साथ संबंध, सीमाओं और भावनात्मक संवाद पर भी लागू हो सकते हैं। पाठक को तैयार नुस्खों की सूची से अधिक एक निर्णय ढांचा मिलता है। कठिन व्यवहार के पीछे क्या चल रहा हो सकता है, अभी कौन सी सीमा जरूरी है और इस क्षण में संबंध को कैसे सुरक्षित रखा जाए, ये प्रश्न प्रतिक्रिया को बदलते हैं। पुस्तक का व्यावहारिक लाभ यह है कि यह सहानुभूति और अधिकार को विरोधी नहीं मानती। बच्चा निराश हो सकता है फिर भी नियम कायम रह सकता है। माता पिता गलती कर सकते हैं फिर भी मरम्मत करके भरोसा मजबूत कर सकते हैं। इसी संतुलन से इसका दृष्टिकोण केवल अनुमति आधारित पालन पोषण से अलग बनता है। अन्य अनुशासन पुस्तकों की तुलना में इसकी विशिष्टता बच्चे के साथ साथ माता पिता की आंतरिक अवस्था, पुरानी परवरिश और ट्रिगरों को चर्चा में शामिल करना है। यह हर परिस्थिति का तात्कालिक समाधान देने का दावा नहीं करती और इसका निरंतर अभ्यास पारंपरिक दंड आधारित आदतों से हटने पर चुनौतीपूर्ण लग सकता है। फिर भी जो पाठक दीर्घकाल में आत्मनियमन, सुरक्षित लगाव, स्पष्ट सीमाएं और पारिवारिक संवाद विकसित करना चाहते हैं, उनके लिए यह एक उपयोगी और विचार उत्तेजक मार्गदर्शिका है। यदि आप समर्थन करना चाहते हैं बेकी केनेडी, आप इस किताब को पॉडकास्ट डिस्क्रिप्शन में दिए गए अमेज़न लिंक से खरीद सकते हैं। किताब पढ़ने के बाद मुझे जरूर बताएं कि आपको यह कैसी लगी और अपने विचार शेयर करें। फिर मिलते हैं।